ओम शांति। मुरली है 5th दिसंबर 1994, 5th दिसंबर 1994। मैं बाप का हूं, ये बार बार स्मृति में लाना पड़ता है, तो बार बार स्मृति में लाना विस्मृति है, तब तो स्मृति में लाते हो ना, तो हाँ ना स्मृति विस्मृति ये युद्ध लवलीन अनुभूति करने नहीं देता। वर्तमान समय बच्चों को जो युद्ध व मेहनत करनी पड़ती है वो व्यर्थ और समर्थ की युद्ध ज्यादा चलती है। कोई कोई बच्चों में व्यर्थ देखने के संस्कार नेचुरल नेचर हो गई है, कोई में सुनने की, कोई में वर्णन करने की, कोई में सोचने की, ऐसी नेचुरल नेचर हो गई है जो वो समझते ही नहीं कि हम ये करते भी हैं। अगर कोई इशारा भी देता है तो क्या व्यर्थ देखना सुनना वर्णन करना ऐसी नेचुरल नेचर हो गई है कि वो समझते ही नहीं कि हम ऐसा करते हैं। अगर कोई इशारा भी देता है तो मानते नहीं, क्रोध आता है। अगर कोई इशारा दे तो इग्नोर करते हैं, बेपरवाह। अगर कोई इशारा भी देते हैं तो माया की समझदारी होने के कारण अपने को बहुत समझदार समझते हैं। इसके लिए अपने को क्या करना है?
कम
समझदार थोड़ा समझना है,
सीखना है, पढ़ना।
डबल समझदार किसको कहेंगे? कल की मुरली से मनी भाई, कल की मुरली से डबल समझदार किसको कहेंगे? कल की अव्यक्तवाणी निखिलेश भाई, डबल समझदार पीछे माताजी, डबल समझदार कल की मुरली से, कल की मुरली से डबल समझदार
जो रॉन्ग को भी राइट समझता,
कल की अव्यक्तवाणी से। कमलेश भाई कल चार डबल थे, उसमें से एक तीसरा डबल कौन सा है? प्रभाकर भाई पहले चेकिंग फिर करना, पहले मिलाना फिर प्रैक्टिकल में लाना, पहले सोचना चेकिंग करना, संकल्प करने से पहले बोल से पहले कर्म से पहले ऐसे समझदार होना। तो बाबा ने कहा डबल समझदार, जो सोच बिना सोचे करते हैं और बाद में सोचते पीछे सोचते उनको क्या कहेंगे? डबल समझदार। व्यंग किया है बाबा ने उसमें कल, सटायर। तो अगर कोई इशारा देता है तो माया की समझदारी, नया शब्द है, कौन सी समझदारी? माया की समझदारी, अपने को बहुत समझदार समझते हैं। या तो माया के समझदार बन जाते हैं वालबेले हो जाते हैं, दो चीजें होती है अगर कोई इशारा देता है तो। एक तो समझते हैं हम बहुत समझदार हैं, दूसरा समझते हैं ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। माया की समझदारी से रॉन्ग में भी अपने को राइट समझते हैं, रॉन्ग कर रहे हैं परंतु राइट समझते हैं। होती माया की समझदारी है लेकिन समझेंगे। मेरे जैसा योगी, मेरे जैसा सेवाधारी कोई है ही नहीं। क्योंकि क्यों समझते हैं ऐसा? क्योंकि उस समय माया की छाया क्या कर देती है, मन और बुद्धि को ऐसे वशीभूत कर देती है जो यथार्थ निर्णय कर नहीं सकते। मायावी योगी, नया शब्द है, मायावी ज्ञानी, समझदार, ईश्वरीय समझ से किनारा करा देती है। माया की समझदारी भी कम नहीं है। माया से योग लगाने वाले भी कैसे योगी है, वो मायावी योगी, अटल, अचल, अचल अटल योगी है, निरंतर योग लगा हुआ है। किससे? माया से। इसलिए फर्क नहीं समझते। उस समय के बोल का नशा भी सभी जानते हो ना, कितना बढ़िया होता है। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को कहते हैं कि प्राप्तियों की अनुभूति के सागर में समाए रहो। इस मुरली में बाबा परमात्मा प्रेम से शुरू कर रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि एक है प्राप्ति और दूसरा है अनुभूति। प्राप्ति तो सबको हो चुकी है, परंतु उसकी अनुभूति में खो जाना, परमात्मा प्रेम में खो जाना, ऐसी आत्माओं की झलक और फलक ऐसी होगी कि माया आंख उठाकर भी देख नहीं सकती। फिर उसके बाद ये पैराग्राफ है कि अगर प्यार में खोए हुए है तो फिर युद्ध नहीं होगी। सागर में समाना अर्थात सागर समान कैसा बन जाना, बूंद का अस्तित्व समाप्त हुआ है, अब बूंद बूंद नहीं है, क्या बन चुकी है, सागर। सागर में समाना अर्थात सागर समान बेहद के प्राप्ति स्वरूप बन कर्म में आना। तो क्या सुना, जो पहले बाबा ने बात की दो बातें, अनुभूति और प्राप्ति, और दूसरा अनुभूति, अनुभूति में खो जाना, प्यार में समा जाना, लवलीन हो जाना। कल भी कहा था ना, अगर समर्थ स्थिति, सर्व गुणों से संपन्न समर्थ स्थिति कौन सी है, एक बाप दूसरा ना कोई, इसमें दिन रात भी समाये रहो तो संकल्प आता है ऐसे समा जाने का, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति, समर्थ स्थिति। तो मैं बाप का हूँ ये बार बार स्मृति में लाना पड़ता है, अगर खोए रहे तो ये लाना नहीं पड़ेगा। तो बार बार स्मृति में लाना, विस्मृति है तब तो स्मृति में लाते हो ना, बार बार लाना पड़ रहा है क्योंकि पीछे विस्मृति खड़ी हुई है। तो हाँ ना स्मृति मृस्मृति ये युद्ध लवलीन अनुभूति करने नहीं देता। वर्तमान समय बच्चों को जो युद्ध व मेहनत करनी पड़ती है वह व्यर्थ व समर्थ की युद्ध चलती ज्यादा चलती है। कोई कोई बच्चों में व्यर्थ देखने के संस्कार नेचुरल हो गए हैं, व्यर्थ सुनने के, वर्णन करने के, कोई में सोचने के संस्कार कैसे हो गए हैं, नेचुरल। कल की मुरली में बाबा ने क्या कहा था, निजी संस्कार बना दो। किसका, किसको निजी संस्कार बना दो, कमलेश भाई किसको निजी संस्कार बना दो, निरंतर याद को नहीं, किसको निजी संस्कार बना दो, इस चीज को बाबा ने कहा निजी संस्कार बना दो। वही जो बात पहले की, एक बाप नहीं, सोचने से पहले चेकिंग, कोई भी स्वीकार करने से पहले चेकिंग, पहले चेकिंग फिर स्वीकार। राजाओं का उदाहरण, रजवाड़े राजा, पहले चेकिंग और फिर स्वीकार। तो चेकिंग करना फिर स्वीकार करना, पहले देखना पहच परखना और फिर स्वीकार करना। ऐसा जो परखने वाला है माया, वो नमस्कार नहीं करेगा, करवाएगा माया से। ऐसी नेचुरल नेचर हो गई है। कौन सी नेचुरल नेचर, यहाँ बात चल रही है व्यर्थ देखना सुनना बोलना, एक ही रह सकता है, व्यर्थ संकल्प या बाप, दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। कल कहा ना, प्रेम गली अति सरकस जामे दो न समाए, दो नहीं हो सकते उसमें। तो ऐसी नेचुरल जो समझते ही नहीं कि हमको ये करते भी है, गलत हो रहा है, परंतु एक होता है रियलाइजेशन होते रहना कि ये गलत है, इसको रोकना है। ऐसी जो आत्माएं हैं वो एक दिन सुधर ठीक हो जाएगी, पर जिसको ये रियलाइजेशन ही नहीं है कि ये गलत भी है, अगर कोई इशारा भी देते हैं तो माया की समझदारी होने के कारण अपने को बहुत समझदार समझते हैं, या तो माया के समझदार बन जाते हैं या अलबेलापन आ जाता है। ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है। माया की समझदारी से रॉन्ग में भी अपने को राइट समझते हैं, होती माया की समझदारी है। लेकिन समझेंगे मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा योगी और मेरे जैसा सेवाधारी कोई है नहीं, क्योंकि उस समय माया की छाया क्या करती है, लॉक लगा देती है, मन और बुद्धि को ऐसे वशीभूत कर देती है जो यथार्थ निर्णय नहीं कर सकते, निर्णय की पावर ही कम हो जाती है, विकारों के वशीभूत, अलबेलेपन के वशीभूत, माया की छाया के प्रभाव में। ऊंची पहाड़ी पर रहने वाले हो तो क्या इस संसार का वायुमंडल, पुरानी दुनिया का वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ सकता? ऊंची पहाड़ी पर रहने वाले हो, नीचे क्यों आते हो? नीचे आने की आवश्यकता क्या है? कौन नीचे लाता है? कल की मुरली, पर्सनल मुलाकात, नीचे कौन लाता है? चार बातें, व्यक्ति, बातें, चीज, वस्तु, ये सब वायुमंडल नीचे लाता है, पर नीचे आना नहीं है। मायावी योगी व मायावी ज्ञानी समझदार ईश्वरीय समझ से किनारा कर देती है, माया की समझदारी भी कम नहीं है। माया से योग लगाने वाले भी पावरफुल योगी है। इधर के योगी कम पड़ सकते हैं, परंतु वो नहीं, संपूर्ण निश्चय बुद्धि योगी है, अटल योगी है, अचल योगी है, हिलने वाले नहीं है, अड़िग रहते हैं माया के योग में, इसलिए फर्क नहीं समझते। उस समय के बोल का नशा भी सभी जानते हो ना, कितना बढ़िया होता है। इसलिए therefore बाप दादा सदा बच्चों को कहते हैं कि प्राप्तियों की अनुभूति योग के सागर में समाये रहो, सागर में डूब जाओ। सागर में समाना अर्थात सागर समान बेहद के प्राप्ति स्वरूपन कर्म में आना, सागर में समा जाना। मीरा का जो नृत्य है वो मीरा के सिवा और किसी को दिखता नहीं। मीरा नाच रही है ये सबको दिख रहा है, पर किसके साथ नाच रही है वो किसी को नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसकी आंखें जिसे देख रही है वो अरूप है, अनाकार है, निराकार है। उसके कान जिसको सुन रहे हैं वो इस सृष्टि की आवाज नहीं है, अव्यक्त आवाज है, अनहद आवाज है, अनहद नाद है वो। क्यों उसको ऐसे हो रहा है? उसके लिए सब कुछ ही कृष्ण में समाया हुआ है, ये संसार ही कृष्णमयी है। उठना बैठना गाना सब कुछ कृष्णमयी है संसार। संसार की रीति से तो वो विक्षिप्त है, पागल है, ये क्या हो रहा है इसको? परंतु जो हवाएं उसे छू रही है वो हवाओं का स्पर्श नहीं लगता है, उसे कृष्ण का स्पर्श लगता है। इतनी खोई है उस प्रियतम की याद में कि संसार के प्रति उसे वैराग लाना नहीं पड़ा है, वह स्वतः ही घटित हुआ है। ये पूरी मुरली वैराग पर है। यहाँ खत्म होने के बाद में बाबा ने वैराग की पूरी मुरली चलाई है। तो वैराग राग स्वतः ही समाप्त हुआ है, लाना नहीं पड़ा है। जहां राग नहीं वहां वैराग है ही है। वैराग कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको लाओ। वैराग राग का अभाव वैराग है, तो संसार के प्रति राग स्वतः ही समाप्त हो गया है। और ही मैं तो प्रेम दीवानी, प्रेम में दीवानी है, सेज सजी है, फूल बिछे है और याद में है, पुकार रही है। संसार के लोग नहीं देख पा रहे किसको पुकार रही है, कौन आ रहा है और कौन जा भी रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परंतु उसके चित्त की दशा, मनोदशा ऐसी है कि वो समाई हुई है प्रेम में, खो गई है प्रेम में। उसका क्या वर्णन करे, वो कोई बहुत बड़ी कवि भी नहीं है तुलसीदास की तरह, जो शास्त्रों के वचन गाए, जो संस्कृत में कुछ लिखे, उसके अनुभव ही उसने अपने पदों में लिख दिए। काव्य की दृष्टि से श्रेष्ठता उनमें नहीं है, परंतु अनुभव की दृष्टि में अनूठे है, अप्रतिम है और जो कुछ उसने लिखा है, क्योंकि वो अनुभव है उस आत्मा के जो उसमें समाई हुई है, जिसको वो परमात्मा समझती है। तो ऐसी संसार में जो आत्माएं हुई है, भक्ति में भी कितना प्रेम रस है, समाई हुई है, उनके लिए युद्ध नहीं है, उसके लिए तो भूलना मुश्किल है। कोई उसके जैसा कहे कि कैसे मैं करूं तुम्हारे जैसा, वो बता नहीं सकेंगी कि क्या करूं। वो दिखाए चैतन्य महाप्रभु रो रहे रो रहे रो रहे कृष्ण प्रेम में, कृष्ण रस जहां देखते हैं बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, और कभी कभी तो गिर जाते हैं बेहोश होकर गश्त खाकर। कोई आकर एक गृहस्थी उनसे सुबह पूछता है कि भगवान से प्रेम कैसे किया जाए, जबकि वो रो रहे पूरा बिस्तर भीगा हुआ है। वो उनसे कहते हैं कि मेरी ये दशा समझकर देखकर भी तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रभु से प्रेम किस तरह किया जाता है, तो मेरे बताने के बाद तुम्हें क्या समझ में आएगा। प्रेम के पुष्प जहां खिलते हैं, प्रेम का आविर्भाव जहां होता है, स्वतः ही संसार से विराग हो जाता है। लाना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता, स्वतः सहज, वो सहज योग है। बाबा सभी मुरलियों में सहज योग कहते हैं, सहज योग हो। बाप बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। ये आंखें धिक्कार है इन आंखों पर, ये आंखें ऐसी पाषाण भी ना हो जाए, यहाँ आंखें भीग जाए। यहाँ तो बाबा यहाँ तक कह रहे संगम युग की महिमा गाओ तो आंखें गीली हो जाए, नैन गीले हो जाए, अश्रुधारा बह जाए इन आंखों से, सजल हो जाए ये आंखें। तो जहाँ प्रेम के पुष्प खिलते हैं, वो प्रेम को खिलने दो अपने अंदर, हृदय में परमात्मा प्रेम के फूल खिल जाए, वो महक वो गंध वो सुगंध उठने लगे, तो स्वतः ही माया की दुर्गंध वो सड़ांध, जन्म जन्म से आत्मा को जो घिरे हुए है, आत्मा को जिसने आच्छादित कर दिया है, वो हट जाएगी, गिर जाएगी, छट जाएगी, परमात्मा प्रेम के फूल खिल जाए। जब बुद्ध को परम ज्ञान प्राप्त हुआ तो कहते हैं फूल खिल गए, मौसम नहीं था, बेमौसम फूल खिल गए, ऋतु नहीं थी उनके आने और जाने का, परंतु सारा जो जहां जहां वो जा रहा था वातावरण बदलने लगा, वहां का मौसम की तासीर सब कुछ बदलने लगा। अब वो फूल खिले या न खिले, शायद न भी खिले हो, शायद दुनिया के लोगों को नहीं दिखे हो, परंतु उसे जरूर दिखे होंगे, क्योंकि हृदय में ज्ञान का प्रकाश आ गया था, तो तब भी फूल खिलने लगे। कहते हैं जब मोहम्मद को ज्ञान प्राप्त हुआ तो जिस रेगिस्तान में तपती हुई धूप में वह चलता था, उस दोपहरी में ऊपर से बादल उसके ऊपर चलते थे, उसको छाया देते थे, जहां जहां वो जाता था वहां वहां बादल उसके ऊपर, रेगिस्तान की उस रेत में, उस धूप में भी शीतलता का अनुभव उसे होता था। वो बादल थे या न थे, शायद दुनिया वाले देख भी न पाते, न भी हो, परंतु उसको शीतलता का अनुभव होता था, क्योंकि हृदय जब परमात्मा प्रेम की तरफ आकृष्ट हो जाता है तो कुछ कुछ नए नए अनुभव होने लगते हैं, जो कि दूसरों को नहीं होते हैं। कुछ कुछ दिखने लगता है। अगर किसी मनोवैज्ञानिक के पास लेके जाओ मीरा को और उसके पदों को, तो उसका विश्लेषण करेंगे वो लोग, कुछ और ही अर्थ निकालेंगे, कहेंगे देखो इसमें भी ये जो हो रहा है शायद पति में मन नहीं है, इसके लिए ये भी जैसे काम का दमन कर दिया है और उसकी अभिव्यक्ति हो रही है। उसको जो स्पर्श हो रहे हैं किसी शरीर शास्त्री के पास ले जाओ तो वो कहेंगे ये केवल स्पर्श है जैसे बाकी स्पर्श होता है, या फिर मन की विक्षिप्तता है। इन अनुभवों को ना तो वैज्ञानिक जान सकते ना ही मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक यहां तक भी उन्होंने अपने सिद्धांत खड़े कर रखे है कि जहर तो पिया परंतु हुआ कुछ नहीं उसको, उसके लिए क्या कहना है। मनोवैज्ञानिक कहेंगे उसने स्वीकार ही नहीं किया वो जहर है, उनके पास अपने सबकॉन्शियस माइंड की थियरी खड़ी है, जो मन स्वीकार करता है वो होता है, परंतु वो ये नहीं स्वीकार करने को तैयार है कि वहां कृष्ण प्रेम था, कृष्ण रस था, कृष्ण में वो डूबी थी, क्योंकि कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति विज्ञान नहीं मान सकता, परंतु वो हो रहा है, अध्यात्मवादी ही उसे समझ सकते हैं। उस तरह के लोग शरीर शास्त्री, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट, ये साइकोलॉजी नहीं है, ये मेटाफिजिक्स है, मनोविज्ञान। आइंस्टाइन लिखता है ना, मैं फिजिक्स की स्टडी करता हूं, द स्टडी ऑफ फिजिक्स टेक्स मी टुवर्ड्स मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स अर्थात अध्यात्मवाद, अध्यात्म के लिए दूसरा शब्द है पैरासाइकोलॉजी जिसको कहते हैं, जिसमें अनुभव होते हैं, ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं कि जिस पर कितनी भी खोजें करो, साइंस कहता है ये गलत है, ये भ्रांति है, हेलुसिनेशन है, विक्षिप्तता है, पागलपन है। जो उसको मीरा को जो अनुभव होते हैं वो कुछ और प्रकार के अनुभव होते हैं। इवन भक्तों की बात हम कर रहे हैं, ज्ञानियों के तो यहाँ भगवान आने के बाद में भी कितनी असंख्य आत्माओं को कितने अनुभव हो रहे। अगर उनको अनुभवों को वैज्ञानिक रीति से देखा जाए तो उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता, परंतु वो हो रहे हैं। लोग कहे बावरी, सासु कहे क्या घर फोड़ी रे। ये परम भक्तों के अनुभव है जिन्होंने स्वयं को परमात्मा प्रेम में समा लिया। वहां पर युद्ध समाप्त हो गया है, उसके लिए तो प्रश्न है उसको भूले कैसे, भूलते ही नहीं है वो। और एक उदाहरण दिखाया मीरा के लिए कि जब वृंदावन जाती है जीव गोस्वामी से मिलने, जीव चैतन्य महाप्रभु के 6 परम शिष्यों में जीव गोस्वामी एक महत्वपूर्ण है जिसने भक्ति का विस्तार किया, और वो कहती है कि मुझे उनसे मिलना है, तो जीव गोस्वामी कहता है कि हम परम सन्यासी है, किसी भी स्त्री से नहीं मिलते कभी। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि वृंदावन में कोई पुरुष भी है, इस सारे सृष्टि में पुरुष एक ही है कृष्ण, कृष्ण छोड़कर सारे त्रिभुवन में कोई पुरुष ही नहीं है, ये पुरुष कहां से आ गया, मैं भी उसे देखना चाहती हूँ, कौन है ये पुरुष, कृष्ण को छोड़कर भी कोई पुरुष है। वो आकर उसके चरणों में गिर जाता है, वो भाव ही बात समाप्त हो चुका है, अंतर्भाव। तो प्रभु प्रेम में समा जाना, बाबा कह रहे हैं सागर में समाना, अर्थात सागर समान बेहद के प्राप्ति स्वरूपन कर्म में आना। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को कहते हैं कि प्राप्तियों की अनुभूति के सागर में समाये रहो, प्राप्तियों के अनुभूति के सागर में समाये रहो। स्वयं को डुबो देना है तो ही योग सरल होगा। ये योग करना ये शब्द भी गलत है, योग लगाना ये शब्द ही गलत है, भाषा की असमर्थता दिखा रहा है। योग कुछ लगाना नहीं है, योग क्रिया है ही नहीं वास्तव में, योग करना नहीं है। योग में तो वो दिखाया है भारत का एक बादशाह जब नेपाल जाता है, नेपाल नहीं जापान में बहुत बड़े भिक्षुओं का, बौद्ध भिक्षुओं का बहुत बड़ा मठ होता है, वो कहता है मुझे दिखाओ आपका मठ कैसा है आश्रम, वो दिखाते हैं यहाँ ये है यहाँ ये है, यहाँ हम लोग रहते हैं, यहाँ हम लोग सोते हैं, पर बीच में एक जगह बनी रहती है, वो बिल्कुल दिखाते ही नहीं, वो उसके बारे में कुछ चर्चा ही नहीं करते। बार बार बादशाह को लगता है इसके बारे में तो कुछ बताए, ये है क्या, हॉल रहता है ये क्या, ये कौन सा सभागृह है, परंतु वो जब भी पूछता है तो बात को पलट देते हो, कहते कि नहीं ये स्नान घर है, यहाँ भोजन बनता है, यहाँ हम ये करते हैं, यहाँ भिक्षु ये करते, अरे ये क्या है, वो कुछ नहीं है, ये है वो है ऐसा है वैसा है, यहाँ करते क्या हो तुम। अंत में पूछता है क्या है, मैं कब से पूछ रहा हूँ, मुझे बस इसके बारे में बताओ यहाँ क्या करते हो। वो कहते क्या बताऊ, भाषा की असमर्थता, यहाँ हम कुछ करते ही नहीं है। फिर कहता है ये हमारा ध्यान गृह है, ध्यान अर्थात कुछ न करना ही ध्यान है, आत्मा में, वहां तो आत्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है, पर स्वयं में स्थित हो जाना, कुछ न करना, जो करना है वो सब छूट गया, स्थित हो गए यहाँ पर, वो है योग। इसके लिए उसका क्या मैं कहूं कि यहाँ हम कुछ करते ही नहीं, तो इसका क्या नाम क्या दूं, नाम देना भी गलत हो जाएगा, योग लगाना, योग लगता नहीं, आज योग पावरफुल कल योग कम पावरफुल, ये कौन सी भाषा है। जो है वो तो कुछ करना ही नहीं है, आत्मा में स्वयं स्वयं स्थित हो जाना, यही तो योग है, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना, यह योग है।
वो तो भारी पड़ रहा है।
क्यों हो रहा है, क्योंकि बाहर के पदार्थों ने खींच रखा है, आकर्षित कर रखा है, इसका रस जो है वो सर्वोपरि है, आत्मा में रस उत्पन्न हो जाए। बाबा जो कह रहे हैं कल का महावाक्य, दिन रात बीत जाए यही संकल्प रहेगा, इस अवस्था में वो और मैं बस, क्या ये अतिशयोक्ति है, क्या ये झूठ कह रहा है भगवान, क्या ऐसा हो सकता है कि दिन और रात बीत जाए, हमें तो एक घंटा बैठना मुश्किल है, आठ घंटा फिर चार घंटा, चार घंटा भी कोई कर दे तो अहंकार से भर जाता है कि हमारा योग इतना है, यहाँ दिन रात भी उस अवस्था में चले जाए। मौजों के दिन मिलन की ये रातें, बीते कभी ना थम जाए हरदम, गर आज हमारा बस जो चले तो हम रोक लेंगे दिन ये सुहाने, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे, बाबा ये कितने प्यारे नजारे। ओम शांति।